संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं शिवानी काला। 9 सितंबर 2022 के बुलेटिन की सुर्खियां। पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए यूएन प्रमुख की विशाल वैश्विक समर्थन की पुकार। 90% देशों में पिछड़ रहा है मानव विकास। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की व्यापक बदलावों के दशकों में आश्वस्तकारी मौजूदगी। वॉल्टर टूर्क बने नए यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त। हम आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे समाचार आपको हर दिन मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों के साथ अपनी एकजुटता दर्शाने के इरादे से शुक्रवार को वहां पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इस जलवायु तबाही से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की पुकार लगाई है। पाकिस्तान में इस वर्ष जून महीने से मानसून के दौरान लगातार बारिश, औचक बाढ़ और बारिश के कारण भूस्खलन से भीषण बर्बादी हुई है, जिससे 3 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान शुक्रवार को राजधानी इस्लामाबाद में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एक साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस त्रासदी से प्रभावित हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की, जिनके घरों, व्यवसायों और आजीविका के साधनों को नुकसान पहुंचा है। महासचिव ने आगाह किया कि कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहे हैं और लोगों की बाढ़ और अकाल में मौत हो रही है। ये बिल्कुल नासमझी भरा है, ये सामूहिक आत्महत्या है।
From Pakistan, I'm issuing a global appeal. Stop the madness. End the war with nature. Invest in renewable energy now.
यूएन प्रमुख पाकिस्तान से एक वैश्विक अपील जारी करते हुए कह रहे थे कि इस उन्माद को रोकिए, प्रकृति के साथ युद्ध का अंत कीजिए, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कीजिए। देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर अपेक्षाकृत कम है, मगर पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले 10 देशों में है।
No country deserves this fate, but particularly no countries like Pakistan that have done almost nothing to contribute to global warming.
महासचिव कह रहे थे कि किसी भी देश को ऐसे अनुभव से नहीं गुजरना चाहिए, मगर विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देशों को, जिन्होंने वैश्विक तापमान की वृद्धि में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। यूएन प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि बाढ़ संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान को विशाल वित्तीय समर्थन की दरकार होगी। विनाशकारी बाढ़ से अब तक $30 अरब से अधिक की बर्बादी हो चुकी है।
मानव विकास पर गुरुवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की एक नवीन और अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि अनेक संकट मानव विकास पर प्रगति के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं और अधिकतर देशों में मानव विकास पीछे की ओर जा रहा है। कुछ और जानकारी के साथ हैं यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
वर्ष 2021-22 की इस मानव विकास रिपोर्ट में एक ऐसे वैश्विक समाज की तस्वीर पेश की गई है जो एक के बाद एक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है और जो बढ़ते अभावों व अन्यायों के जोखिम का भी सामना कर रहा है। वैश्विक व्यवधान उत्पन्न करने वाली घटनाओं में सबसे ऊंचा स्थान COVID-19 महामारी का और उसके बाद यूक्रेन पर रूसी हमले का है। इस हमले के अलावा व्यापक सामाजिक और आर्थिक बदलावों, पृथ्वी के अस्तित्व से संबंधित खतरनाक परिवर्तनों और ध्रुवीकरण में बेतहाशा वृद्धि का माहौल भी अपनी तरह की चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। इस सूचकांक में देशों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन के स्तर का आकलन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP पिछले लगभग 32 वर्षों से मानव विकास सूचकांक यानी SDI की गणना करता रहा है और इस अवधि में इस सूचकांक में पिछले 2 वर्षों में वैश्विक स्तर पर लगातार गिरावट दर्ज की गई है। मानव विकास पीछे की तरफ जाकर 2016 के स्तर पर पहुंच गया है, जिससे टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में हासिल की गई प्रगति उलट गई है। गौरतलब है कि ये लक्ष्य मिलकर ही 2030 का टिकाऊ विकास एजेंडा बनाते हैं, जो कि दुनिया भर के लोगों और पृथ्वी के लिए एक बेहतर व न्यायसंगत भविष्य की खातिर संयुक्त राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है। UNDP के प्रशासक अखीम स्टीनर का कहना है कि दुनिया एक के बाद एक संकटों का सामना करने में बहुत मुश्किलें उठा रही है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। महासचिव ने बुधवार को जारी अपने वक्तव्य में कहा कि 96 वर्षीय महारानी की उनके विनम्र व्यवहार, गरिमा व समर्पण के लिए विश्व भर में प्रशंसा की जाती रही है। महासचिव ने ध्यान दिलाया कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय संयुक्त राष्ट्र की एक अच्छी मित्र थी और उन्होंने न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय का 50 वर्षों से अधिक समय के अंतराल में 2 बार दौरा किया। 1957 में महारानी ने महासभा को संबोधित करते हुए कहा,
The peoples of the world expect the United Nations to persevere in its efforts.
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन स्कॉटलैंड के बालमोरल किले में हुआ, जहां शाही परिवार के सदस्य ग्रीष्म ऋतु में अक्सर अवकाश व आराम करने के लिए आते हैं। पिछले एक वर्ष में उन्होंने अपने कुछ राजसी दायित्वों को अपने सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को सौंप दिया था, जो कि उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी हैं। मई 2022 में संसद सत्र के आरंभ होने पर प्रिंस चार्ल्स ने सभापति का दायित्व संभाला और 1963 के बाद ये पहली बार था जब महारानी एलिजाबेथ ने इस संसदीय कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत यूएन संस्था और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने बुधवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो दर्शाती है कि यदि पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में प्रगति की मौजूदा रफ्तार ही जारी रही तो इस लक्ष्य को पाने में लगभग 300 साल लग सकते हैं। कुछ और जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी, हिंसक संघर्ष और जलवायु परिवर्तन समेत सिलसिलेवार वैश्विक संकटों की पृष्ठभूमि में लैंगिक विषमताएं बद से बदतर हो रही हैं। इसके साथ साथ महिलाओं के यौन व प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर प्रहार से हालात और चुनौतीपूर्ण हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप देशों के लिए 2030 की समय सीमा के भीतर टिकाऊ विकास के 5वें लक्ष्य को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। बुधवार को जारी द जेंडर स्नैपशॉट 2022 रिपोर्ट दर्शाती है कि दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए किस तरह सहयोग, साझेदारी और निवेश की आवश्यकता है। जल्द कार्रवाई के अभाव में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर प्रतिबंध न लगाने वाली या विवाह और परिवार में उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करने वाली कानूनी प्रणालियां आने वाली अनेक पीढ़ियों तक जारी रह सकती हैं। रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं को कार्यस्थलों पर नेतृत्व के पदों पर समान प्रतिनिधित्व हासिल करने में 140 साल लगेंगे और राष्ट्रीय संसदों में ऐसा होने में 40 साल तक लग सकते हैं। इस बीच वर्ष 2030 तक बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए पिछले दशक की तुलना में प्रगति में 17 गुना तेजी लानी होगी। रिपोर्ट में गरीबी उन्मूलन प्रयासों को धक्का पहुंचने पर भी चिंता व्यक्त की गई है। बढ़ती कीमतों के कारण स्थिति और अधिक बिगड़ने की आशंका है। यह रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन शिखर बैठक से पहले जारी की गई है, जो कि इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान आयोजित की जा रही है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने ऑस्ट्रिया के राजनयिक वोल्कर टुर्क को गुरुवार को अगला यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया है। यूएन प्रमुख ने एक वक्तव्य जारी करके कहा है कि वोल्कर टुर्क ने अपना काफी लंबा पेशेवर जीवन सार्वभौमिक मानवाधिकारों के प्रोत्साहन के लिए समर्पित किया है, जिनमें दुनिया के कुछ सबसे कमजोर लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण मुहैया कराया जाना भी शामिल है। इनमें शरणार्थी और किसी देश की नागरिकता से वंचित लोग भी शामिल हैं। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क इस समय संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी कार्यालय में अव्वल महासचिव के रूप में वैश्विक नीति संबंधी कार्य में समन्वय कर रहे हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब शिवानी काला को दीजिए इजाजत।